एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों का इस ज्ञान गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर कह सकते हैं एक विस्तृत बातचीत करने जा रहे हैं जिसने वाकई दुनिया का समुद्र को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, रेचल कार्सन की द सी अराउंड अस 1951 में छपी थी, सोचिए। लेकिन आज भी, मतलब जब हम क्लाइमेट चेंज और ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये किताब शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना?
सही कहा। यह हमें याद दिलाती है कि समुद्र वो सिर्फ छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, ये तो धरती का दिल है। जीवन यहीं से शुरू हुआ और हमारा भविष्य भी, हाँ, इसी से जुड़ा है।
तो चलिए इसी गहरे सागर में, मतलब इस किताब के ज्ञान में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं लेखिका से, रेचल कार्सन। कौन थी ये और क्यों इतनी खास मानी जाती हैं?
रेचल लोइस कार्सन एक अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी तो थी ही, पर उससे कहीं ज्यादा वो एक कमाल की लेखिका थी और पर्यावरण की बड़ी पैरोकार भी। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो मुश्किल वैज्ञानिक बातें भी इतनी खूबसूरती से, इतनी सरल भाषा में लिखती थी कि वो कहानी लगती थी।
हाँ, सुना है उनके बारे में कि दिमाग वैज्ञानिक का पर दिल कवि का। उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस से जूलॉजी में मास्टर्स किया, फिर सरकारी नौकरी भी की अमेरिकी मत्स्य ब्यूरो में।
जी हाँ, और उसी नौकरी की वजह से उन्हें समुद्र पर हो रही लेटेस्ट रिसर्च का पता चलता रहता था, वो जानकारी जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी।
और उन्होंने उसी जानकारी को अपनी किताबों में उतारा। द सी अराउंड अस उनकी दूसरी किताब थी समुद्री त्रयी में,
और हिट हो गई।
बहुत हिट, 1.5 साल बेस्ट सेलर रही, अवार्ड भी जीता। और इसी किताब से उन्हें वो पहचान मिली जिसकी वजह से उनकी अगली किताब साइलेंट स्प्रिंग दुनिया भर में इतना असर डाल पाई,
कीटनाशकों वाली।
अच्छा, तो अब आते हैं असल किताब पर, द सी अराउंड अस। ये है क्या आखिर, मतलब इसका निचोड़ क्या है?
आप इसे समुद्र की जीवनी कह सकती हैं, एक बहुत ही काव्यात्मक लेकिन विज्ञान पर आधारित जीवनी। कार्सन का मकसद था कि समुद्र विज्ञान, जो काफी जटिल विषय है, वो आम लोगों को भी समझ आए, उन्हें उसमें रुचि जगे, एक आश्चर्य का भाव आए।
और उनका मेन पॉइंट क्या था, सबसे बड़ी बात जो वो कहना चाह रही थी?
उनका केंद्रीय विचार, मतलब जो सार है, वो ये है कि समुद्र ही हमारे ग्रह की सबसे असली, सबसे बुनियादी शक्ति है, जीवन देने वाली। ये सिर्फ पानी का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है।
जिंदा सिस्टम?
हाँ, इसी ने जीवन बनाया, यही मौसम कंट्रोल करता है, जलवायु को आकार देता है, पृथ्वी का पूरा इतिहास वो इसकी गहराइयों में दबा है, और हमारा भविष्य भी इसी पर टिका है।
तो वो कह रही थी कि समुद्र को सिर्फ इस्तेमाल की चीज मत समझो, ये तो जीवन का पालना है, दुनिया का इंजन है। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, और इसी सोच को उन्होंने किताब के तीन हिस्सों में बांटा है। पहला भाग है महासागर, मदर सी।
महासागर, नाम ही कितना पावरफुल है। तो इस हिस्से में क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है?
ये हिस्सा हमें ले जाता है बिल्कुल शुरुआत में, अरबों साल पहले। पृथ्वी कैसे बनी, आग का गोला थी, फिर भाप, और फिर लाखों साल तक बारिश जिसने धरती को ठंडा किया और बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा, तब जाकर समंदर बने। ये पढ़कर ना एहसास होता है कि वक्त कितना विशाल है और समुंदर कितना पुराना।
और फिर सतह और गहराइयों की बात, पानी खारा क्यों है ये सब?
हाँ, वो बताती हैं कि नमक कहाँ से आया, जमीन से, नदियों के जरिए, फिर सतह के पास का हिस्सा जहाँ धूप पहुँचती है उसे वो कहती हैं समुंद्र का चारागाह। जैसे जमीन पर घास होती है ना, वैसे ही पानी में ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन।
फाइटोप्लैंक्टन, हाँ सुना है, ये पूरे समुद्री जीवन का आधार है।
बिल्कुल, और फिर वो गहराइयों की बात करती हैं, जहाँ अंधेरा है, दबाव बहुत ज्यादा है, वो लंबी बर्फबारी वाला आइडिया भी यही है।
हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लंबी बर्फबारी, जरा फिर से बताइए ना उसके बारे में।
कार्सन कहती हैं कि समुद्र की गहराइयों में लगातार महीन कण गिरते रहते हैं, धूल, ज्वालामुखी की राख, और सबसे ज्यादा मरे हुए छोटे छोटे जीवों के कंकाल। ये धीरे धीरे परत दर परत जमते जाते हैं, जैसे कोई बर्फबारी हो जो लाखों साल से चल रही हो।
बाप रे।
और ये परतें ये पृथ्वी के इतिहास की किताब बन जाती हैं। वैज्ञानिक इन्हें पढ़कर पता लगाते हैं कि लाखों साल पहले मौसम कैसा था, कौन से जीव थे।
कमाल है, मतलब समुद्र अपने अंदर इतिहास समेटे हुए हैं और वो अंधेरी दुनिया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती।
हाँ, सूर्यहीन सागर अध्याय, वहां तो जैसे दूसरी ही दुनिया है। स्थायी अंधेरा, भयानक दबाव, जमा देने वाली ठंड, और जीव, बड़े बड़े मुंह वाले शिकारी, खुद रोशनी पैदा करने वाले,
बायोल्यूमिनेसेंट।
हाँ वही बायोल्यूमिनेसेंट जीव। ये हिस्सा याद दिलाता है कि हम समुद्र के बारे में कितना कम जानते हैं, अभी भी कितना कुछ रहस्य है।
ये तो ही समुद्र की बनावट और जीवन की बात। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अशांत सागर, मतलब जो हमेशा चलता रहता है, उसकी गति।
एकदम सही। इसमें कार्सन उन ताकतों के बारे में लिखती हैं जो समुद्र को चलाती हैं, जैसे हवा। हवा पानी पर रगड़ खाती है तो धाराएं बनती हैं, गल्फ स्ट्रीम जैसी बड़ी धाराएं।
अच्छा।
और फिर पृथ्वी का घूमना, उसकी वजह से ये धाराएं सीधी नहीं बहती बल्कि मुड़ जाती हैं, बड़े बड़े चक्कर काटती हैं। कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं इसे। ये सब मिलकर एक, आप कह सकते हैं, 3D सिस्टम बनाते हैं।
और वो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, वो क्या चीज है?
हाँ, वो भी इसी भाग में है। कार्सन समझाती हैं कि सूरज की गर्मी, हवाएं और धरती का घूमना, ये सब मिलकर समुद्र के पानी को पूरी दुनिया में घुमाते हैं। गर्म पानी ध्रुवों की तरफ जाता है, ठंडा पानी वापस आता है। ये पूरी पृथ्वी पर गर्मी को बांटने का एक नेचुरल तरीका है।
और इसी को उन्होंने ग्लोबल थर्मोस्टेट कहा है। ये तो आज के समय में समझना बहुत जरूरी है।
पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने देता। कार्सन इसे पृथ्वी का थर्मोस्टैट कहती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
और ज्वारभाटा, वो भी इसी भाग में है?
जी, चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र का रोज का उठना गिरना। कार्सन इसे सिर्फ एक लोकल घटना नहीं मानती, वो इसे एक ब्रह्मांडीय लय कहती हैं, जैसे समुद्र पूरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो।
वाह, क्या नजरिया है। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी भाग, मनुष्य और उसके आसपास का समुद्र। यहाँ बात इंसानों पर आ जाती है।
हाँ बिल्कुल। यहाँ कार्सन देखती हैं कि समुद्र और हम, मतलब इंसान, कैसे जुड़े हुए हैं। समुद्र हमें क्या देता है? खाना, नमक, दूसरे खनिज। और समुद्र हम पर कैसे असर डालता है? मौसम बनाता है, बारिश लाता है,
और कभी कभी तूफान भी।
हाँ वो भी। वो बताती हैं कि समुद्री धाराएं कैसे किनारों के मौसम को बदल देती हैं। जैसे पश्चिमी यूरोप, वो गल्फ स्ट्रीम की वजह से कनाडा के उसी लैटिट्यूड वाले इलाके से ज्यादा गर्म रहता है।
अच्छा, ये तो पता नहीं था। और इस भाग में वो फिर से लंबे टाइम स्केल पर जाती है, हेमियुग वगैरह।
हाँ, आखिरी अध्यायों में से एक है, महान और प्राचीन लय। इसमें वो फिर हमें याद दिलाती हैं कि जलवायु हमेशा बदलती रही है, हिमयुग आते जाते रहे हैं। ये पृथ्वी की कक्षा में छोटे मोटे बदलाव और समुद्र की गर्मी सोखने की क्षमता का नतीजा है। और इस पूरी कहानी में इंसान तो बस अभी अभी आया है, कितना नया है, कितना नाजुक।
और किताब का अंत उपसंहार में क्या है?
उपसंहार में वो फिर से समुद्र के रहस्य पर लौटती हैं कि हमने इतना कुछ जान लिया, फिर भी कितना कुछ बाकी है। एक तरह से विनम्रता का संदेश है। और बाद के एडिशंस में उन्होंने एक नोट जोड़ा था परमाणु कचरे को समुद्र में फेंकने पर। यह दिखाता है कि वो पर्यावरण को लेकर कितनी चिंतित होने लगी थीं।
ये सब सुनकर लगता है कि किताब में बहुत गहरे संदेश हैं। अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी?
हाँ, कई हैं। मेरे ख्याल से पहला तो है समय का विशाल पैमाना, मतलब वो जो डीप टाइम वाली बात है, जब हम अरबों साल के सामने अपने कुछ हजार साल देखते हैं तो एक अलग ही नजरिया मिलता है, विनम्रता आती है।
हाँ, ये तो है। दूसरा शायद वो महासागर वाला विचार कि जीवन समुद्र से ही आया।
बिल्कुल। कार्सन कहती हैं कि हम सबके तार समुद्र से जुड़े हैं। हमारे खून में जो नमक है उसका अनुपात भी पुराने समुद्र जैसा है। तो समुद्र कोई पराई जगह नहीं, हमारा अपना मूल घर है। ये एक कनेक्शन बनाता है।
तीसरा मुझे लगता है वो आपसी जुड़ाव वाली बात, इंटरकनेक्टेडनेस, कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हवा, पानी, जमीन, जीवन, एक जगह कुछ करेंगे तो उसका असर दूसरी जगह होगा ही।
एकदम। ये आज के लिए कितना जरूरी है समझना। और चौथा है ज्ञान और रहस्य का संतुलन। वो विज्ञान की बात करती हैं पर साथ ये भी कहती हैं कि देखो अभी कितना कुछ जानना बाकी है, खासकर गहराइयों के बारे में। खोज का उत्साह भी है और रहस्य के प्रति सम्मान भी।
और पांचवा, क्या हम कह सकते हैं कि इसमें पर्यावरण चेतना के बीच थे? मतलब सीधी चेतावनी ना सही, पर इशारा तो था।
जरूर। वो जिस तरह प्राकृतिक संतुलन की बात करती हैं और बाद में परमाणु कचले का जिक्र, वो साफ दिखाता है कि वो मानवीय दखल के खतरों को समझ रही थीं। वो अपने समय से बहुत आगे थीं।
कार्सन की लिखाई इतनी खूबसूरत है कि कुछ बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। कुछ ऐसे विचारों का सार अगर हम शेयर करें।
हाँ, क्यों नहीं। जैसे एक विचार है, शुरुआत में धरती उथल पुथल भरी जगह थी, पर जब समुद्र में जीवन आया वो इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। ये वही महासागर वाली बात है, जीवन की शुरुआत।
और वो तलछट सेडिमेंट्स वाला, समुद्र की तलछट, वो जैसे धरती के इतिहास की एक लंबी कविता है। जब हम उसे पढ़ना सीख जाएंगे शायद सारे राज खुल जाएं। ये दिखाता है कि समुद्र कैसे इतिहास को सहेजता है और हम अभी कितना कम जानते हैं।
उनकी चिंता इस विचार में दिखती है। अजीब बात है, जिस समुद्र ने जीवन दिया, आज उसी जीवन का एक रूप इंसान उसे खतरे में डाल रहा है। खतरा खुद जीवन पर है। ये एक सीधी पर गहरी चेतावनी है।
और समय के पैमाने पर, जैसे समुद्र बदलता है वैसे ही जमीन के किनारे भी बदलते हैं। जिसे हम स्थायी समझते हैं वो बस वक्त का एक छोटा सा लम्हा है। ये हमें प्रकृति की ताकत और बदलाव की सच्चाई याद दिलाता है।
ये बातें आज भी कितनी सच लगती हैं। अच्छा, अब ये सोचें कि इस किताब को पढ़कर हमारी रोज की जिंदगी में क्या फर्क आ सकता है, क्या बदल सकता है।
सबसे पहले तो शायद जागरूकता पर्यावरण को लेकर। जब हम समझते हैं कि समुद्र कैसे पृथ्वी का तापमान कंट्रोल करता है, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग या समुद्र में बढ़ता प्रदूषण, ये सिर्फ खबरें नहीं लगती। ये लगता है कि हाँ, ये हमारे ग्रह के सिस्टम को बिगाड़ रहा है।
और शायद दुनिया को देखने का नजरिया भी, एक जुड़ाव महसूस होता है।
हाँ बिल्कुल। किताब पढ़ने के बाद आप समंदर किनारे जाएंगे ना, तो लहरें सिर्फ लहरें नहीं लगेंगी। आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आई हैं, किस हवा ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया। ज्वार भाटे को देखेंगे तो चांद सूरज का कनेक्शन महसूस होगा। प्रकृति ज्यादा रहस्यमयी और ज्यादा कनेक्टेड लगने लगती है।
और वो जो भूवैज्ञानिक समय वाली बात है, उससे शायद विनम्रता आती है, लंबी सोच।
हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जब आप इतने बड़े स्केल पर सोचते हैं तो अपनी रोज की परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। शायद इससे हमें आज के फायदे से ज्यादा कल के बारे में, धरती के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती है।
और क्योंकि कार्सन इतने अच्छे से समझाती हैं, तो विज्ञान की समझ भी बढ़ती है। लोग समुद्र, जलवायु, इन चीजों के बारे में बेसिक बातें जान पाते हैं। फिर वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं।
और ये सब मिलकर शायद प्रकृति को बचाने के लिए प्रेरित करता है ना? जब पता चलता है कि समुद्र के वो छोटे छोटे पौधे हमारी आधी ऑक्सीजन बनाते हैं, तो फिर समुद्र को साफ रखना, प्लास्टिक कम करना, ये सब काम ज्यादा मायने रखने लगते हैं। ज्ञान जिम्मेदारी लाता है।
तो अगर आपसे पूछूं, इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे यादगार बात क्या रही?
मेरे लिए शायद वो नजरिया ही बदलना। ये सोचना कि हम जमीन वाले ग्रह पर नहीं, पानी वाले ग्रह पर रहते हैं। महाद्वीप तो बस बड़े द्वीप हैं, असली खिलाड़ी तो समुद्र है। वही मौसम बनाता है, जीवन देता है। ये पूरी सोच पलट देता है।
और मेरे लिए कार्सन की दूरदृष्टि, मतलब ये सोचना कि आज से 70 साल पहले उन्होंने वो कनेक्शन देख लिया था हमारे कामों और धरती की सेहत के बीच, और इतनी खूबसूरती से लिखा। उनका काम आज भी एक तरह की चेतावनी है कि हम जिस सिस्टम पर टिके हैं उसे खतरे में ना डालें। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।